नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, परिस्थिति के अनुसार आरडीजी दे सकती है केंद्र सरकार। भाजपा पर आरडीजी के मुद्दे पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, जायका परियोजना के दूसरे चरण को प्रदेश के 296 स्थानों पर किया जाएगा क्रियान्वित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का किया आग्रह। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने शाहपुर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। और यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 28 फरवरी से प्रदेशव्यापी मानव पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। दिल्ली दौरे से वापस लौटने के बाद आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय प्रदेश को सबसे ज्यादा आरडीजी मिली, इसके बावजूद सरकार ने ऋण का बोझ घटाए बिना प्रदेश पर कर्ज और देनदारियों का बोझ लाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में आरडीजी के संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी विस्तृत चर्चा की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आरडीजी को ना तो स्वीकार किया गया है और ना ही खारिज, बल्कि वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसे नोटेड लिखा है। ऐसे में केंद्र सरकार परिस्थिति के अनुसार आरडीजी दे सकती है।
आरडीजी के मामले में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने विचार वहाँ व्यक्त किए कि ये प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसमें सरकार की बात नहीं है, ये प्रदेश के लोगों का हक है। अगर ये अधिकार आज हम खो देंगे, जो संविधान के द्वारा हमको दिया गया है, उससे हमें बहुत नुकसान होगा और भविष्य में इसको दोबारा लाने में बहुत मुश्किल होगी। आरडीजी के जो 16 फाइनेंस कमीशन ने नोटिंग की है, उसने उसे ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया, नोटेड। नोटेड का मतलब है कि भारत सरकार अपने अनुसार उसको दे सकती है। मैं तो चाहूंगा कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सहयोग करे, पर वो सहयोग करने के पक्ष में नहीं है, ये बड़ी विडंबना है।
राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में पार्टी हाईकमान द्वारा फैसला लिया जाएगा।
राज्यसभा के चुनाव के लिए भी काफी दिन है और राज्यसभा के चुनाव का फैसला हाई कमांड करती है। माननीय श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी, राज्यसभा का कौन प्रत्याशी होगा उसको चयन करते हैं और उसके बाद हम उनको वोट डालकर राज्यसभा भेजेंगे।
कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि जायका परियोजना के दूसरे चरण को प्रदेश के सभी जिलों के 296 स्थलों पर क्रियान्वित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य वर्तमान 55,000 रूपये प्रति हेक्टेयर आय को बढ़ाकर 2,50,000 रूपये प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाना है, ताकि प्रदेश के किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सके। धर्मशाला में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर आज उन्होंने कहा कि जायका परियोजना ने भौगोलिक, सामाजिक व जलवायु संबंधी अनेक चुनौतियों के बावजूद जायका परियोजना में सिंचाई प्रणालियों के निर्माण और सतत कृषि प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
सेकंड फेज में जो हमारा कार्यक्रम है, वो इसकी एक्सटेंशन जो है वो और गांवों तक जो डाइवर्सिफिकेशन है क्रॉप्स की, और कितना एरिया जो है वो हम सेकंड फेज में जो है वो इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ाएंगे। यह टोटल ग्रांट है 1,010 करोड़। हिमाचल के 296 गांव पे अलग अलग जिलों में हम काम कर रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश के वर्तमान आर्थिक स्थिति और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न वित्तीय विषयों पर चर्चा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमाचल प्रदेश के संतुलित व सतत विकास के लिए केंद्र का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक मजबूती, आधारभूत संरचना के विकास, आपदा राहत और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश को दिए जा रहे निरंतर सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। जयराम ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सुक्खू सरकार हिमाचल के हितों के नाम पर केवल घड़ियाली हांसू बहा रही है, जबकि प्रदेश के हितों से इनका कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज चंबा विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय साहू और परोथा में 2,74,00,000 रूपये की लागत से बनने वाले भवनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के बावजूद आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 28 राज्यों में तीसरे स्थान पर है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के 140 स्कूलों में आगामी सत्र से CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के शाहपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने नशे के खिलाफ जन जागरूकता संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित हाफ मैराथन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वॉलीबॉल बेहद लोकप्रिय खेल है और इस खेल को गांव गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य सरकार से खेल ढांचे को मजबूत करने और स्थायी कोचों की संख्या बढ़ाने की मांग की। अनुराग ठाकुर ने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों को अपनाने का आह्वान किया।
वॉलीबॉल बहुत ही लोकप्रिय खेल भी है और इस लोकप्रिय खेल को और लोकप्रिय बनाने के लिए और गांव-गांव तक पहुंचाने के लगातार प्रयासरत है। वहीं पर राज्य की सरकार से निवेदन भी करना चाहूंगा, कई नए कोचेस की नियुक्ति और खेलों का बजट भी कम से कम 5 से 7 गुना बढ़ाना चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने आज राजकीय महाविद्यालय सिंहुता के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भटियात क्षेत्र में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति प्रदान की गई है और बीते 3 वर्षों के दौरान संपर्क मार्गों व विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 204,53,00,000 रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा है कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 28 फरवरी से प्रदेश व्यापी मानव पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो सके। मुख्य सचिव ने कहा कि इस अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 67,000 किशोरियों को एकल खुराक टीका निशुल्क लगाया जाएगा। 3 महीने के इस विशेष अभियान के बाद HPV टीकाकरण नियमित रूप से यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज HPPSC एप्लीकेंट और HPPSC अटेंडेंस ऐप का अनावरण किया गया। आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने बताया कि HPPSC एप्लीकेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगी और इस ऐप के माध्यम से अभ्यर्थी अपने मोबाइल से किसी भी स्थान पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा HPPSC अटेंडेंस ऐप को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के लिए परीक्षा प्रक्रिया में एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में शुरू किया जा रहा है। निवेदिता नेगी ने बताया कि ये प्रक्रिया प्रतिरूपण को रोकने में सहायक होगी और इससे परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता व निष्पक्षता सुदृढ़ होगी। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि बिलासपुर जिला में पशुपालकों व पशु व्यापारियों की सुविधा के लिए एक वर्ष में कम से कम 2 बार कैटल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस ट्रेड फेयर के माध्यम से जिले के पशुपालकों और पशु व्यापारियों को एक ही मंच पर पशुओं की खरीद फरोख्त की सुविधा सुनिश्चित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, परिस्थिति के अनुसार RDG दे सकती है केंद्र सरकार। भाजपा पर RDG के मुद्दे पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, जायका परियोजना के दूसरे चरण को प्रदेश के 296 स्थानों पर किया जाएगा क्रियान्वित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का किया आग्रह। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने शाहपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ और यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 28 फरवरी से प्रदेशव्यापी मानव पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान होगा शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।